के दिन इस अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम दिव्य देशना दे करके और आज समोशरण का त्याग करके योग निरोध कर दिया। आज वही तेरस का पवित्र दिन है जब भगवान योग निरोध करके अपने शेष दूर शुक्र ध्यान के द्वारा चार भारतीय कर्मों को नष्ट करने के लिए ध्यानस्थ हो गए थे। इसलिए आज का यह दिन धन्य तेरस के नाम से जाना जाता है, जो हमारी भोगा शक्ति की वजह से बिगड़ करके धन तेरस कहलाने लगा। वास्तव में उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए आज उपक्रम किया था, इसलिए उनके जीवन में आज का दिन धन्य है। लेकिन हम सब लोग जिस चीज का उन्होंने त्याग किया उसी चीज को संग्रह करने में आज के दिन की सार्थकता समझते हैं। हमें ऐसी बहुत सारी मान्यताएं जिनका कि वास्तव में क्या अर्थ था और हमने क्या अर्थ ले लिया है, उन पर भी विचार करना चाहिए। ये जो प्रचलित मान्यता है कि आज के दिन हमें कोई ना कोई सामग्री अपने घर में खरीद करके लानी चाहिए, उसका कहीं से कहीं कोई औचित्य नहीं। यह अत्यंत विचारणीय विषय है। हम परिक्रमा संचय करने में आज के दिन की सार्थकता माने या कि परिग्रह के त्याग करने में आज के दिन की सार्थकता माने। भगवान तो समोशरण रूपी बाह्य लक्ष्मी का भी त्याग करके चले गए और हम उसी बाह्य लक्ष्मी को संचित करने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं और हम सोचते हैं कि हम इस तरह अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? हम भगवान के जीवन से जो संदेश मिलना चाहिए वो संदेश ना लेकर के अन्य कोई संदेश लेकर के क्या अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं? आज भगवान तो अपने मन वचन काय के द्वारा आने वाले कर्मों के आश्रय को भी रोकने के लिए योग निरोध, अर्थात जो आश्रय सिर्फ सातावेदनी का मात्र एक कर्म का हो रहा था, उसे भी वे रोकने के लिए जिस सातावेदनी के फलस्वरूप उनके नहीं चाहते हुए भी समुशरण जैसी अपार विभूति उनके चरणों में पड़ी हुई थी, जिससे कि वे अलिप्त होकर चार अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान थे, उस समुशरण को भी छोड़ करके वे और ध्यानस्थ हो गए शुक्ल ध्यान में। शुक्ल ध्यान के ही फलस्वरूप उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी, शेष दो शुक्ल ध्यान के माध्यम से अब वे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। कल का दिन बीच है, दो दिन का योग निरोध किया था उन्होंने और अमावस्या के सुबह प्रत्युष में सूरज की पहली किरण के साथ भगवान को निर्वाण हुआ। हमें आज के दिन को कैसे मनाना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन ऊंचा उठे, बात सिर्फ ये है। असल में जरा सा विचार करें, भगवान की दिव्य देशना पूरी हुई, भगवान योग निरोध के लिए चले गए, समुशरण विघटित हो गए, सब लोगों ने जय जयकार की कि बस अब थोड़ा ही समय शेष रह गया है कि भगवान मुक्त हो जाएंगे, और लोग प्रसन्न हैं इस बात से कि भगवान योग निरोध करके अपने कल्याण के लिए तत्पर हैं, हम भी उत्सव मनाते हैं, और लोगों ने आज का दिन उत्सव पूर्वक मनाया होगा। देवों ने भी उस समुशरण के विघटन के बाद लोगों को जो भी वैभव हो सकता होगा वो दिया। ये घटना कहीं पर स्पष्ट लिखी तो नहीं मिलती पुराणों में, लेकिन समुशरण के विघटित होने पर देव अपने स्वर्ग चले गए और सामान्य जन समुशरण विघटित होने पर अपने घरों में लौट आए, लेकिन उत्सव मना रहे हैं कि अब इंतजार है भगवान का मोक्ष कल्याण देखने का सौभाग्य मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया हुई होगी क्या आज हम ठीक उसी तरह से ऐसा विचार करके कि भगवान ने जिस बाह्य संपदा का त्याग किया, हमें भी आज का दिन उस बाह्य संपदा से आसक्ति घटाने के लिए मनाना चाहिए। भगवान समोशरण छोड़कर चले गए, हम भी जो है हमारे पास जो वैभव है क्या उसका त्याग कर पाएंगे आज के दिन? हम तो संग्रह करने के लिए ही आज के दिन की सार्थकता मान रहे हैं। ठीक है, हम सहसा तो बदल नहीं पाएंगे इस प्रक्रिया को, हम आपसे कह भी देंगे तो आपको जरूरी नहीं है कि रुचिकर जान पड़े, और फिर इतने समय से चली आ रही है तो भैया इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अगर 10 चीजें नई लाएंगे तो 10 पुरानी चीजों का त्याग कर देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? आज जो जो कुछ भी हम लाएंगे जरूर लाएं, मैं तो कहता हूं और ज्यादा मात्रा में, लेकिन ध्यान ये रखें कि जितना लाएंगे आज घर में उतना ही, और हम दान भी कर देंगे उतना ही हम निकाल भी देंगे, परिग्रह नहीं बढ़ेगा बल्कि जितना है कम भी नहीं होगा, न बढ़ रहा है न कम हो रहा है, ज्यों का त्यों बना हुआ है, और मजा यह है कि देने का सौभाग्य और मिल गया, दान करने का सौभाग्य ये तो वैसे ही मिल गया। अगर इस दिन को हम इस तरह से भी मनाएं तो भी हम वास्तव में अपने जीवन के कल्याण के लिए इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। हमारे अपने जीवन में जितनी भी बुराइयां आती हैं, जितने भी पाप आते हैं, उन सब का अगर कारण है तो एक ही है,
हमारी अपरिमित इच्छाएं, हमारी कृत्रिम आवश्यकताएं, हमारे धनोपार्जन की मिथ्या उपाय करने की प्रवृत्ति, हमारे अपने आवश्यकताओं को बढ़ाकर दूसरे के शोषण करने की प्रवृत्ति, आवश्यकता से अधिक चीजों को संचित करके रखने की प्रवृत्ति, ये सब हमारे जीवन को बुराइयों की तरफ ले जाने वाले कारण हैं। इच्छाएं सबके भीतर हैं, लेकिन असीम और अपरिमित इच्छाएं हो जाएं, तो फिर व्यक्ति हिंसा झूठ चोरी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। व्यक्ति की आवश्यकताएं सबकी होती हैं, लेकिन वे आवश्यकताएं कृत्रिम हो जाए। एक तो नेचुरल आवश्यकता है, सांस लेना कितना जरूरी है ले लो, पानी पीना कितना जरूरी है पियो, भोजन करना कितना जरूरी है हाँ बिल्कुल जरूरी है, ये नेचुरल नीड है, ये बिल्कुल स्वाभाविक हमारी आवश्यकताएं हैं। लेकिन बहुत सी कृत्रिम आवश्यकताएं हमने अपने आसपास जोड़ रखी, हम उसको भी आवश्यकता मानते हैं, जबकि उनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति में भी हमें हिंसा झूठ चोरी का आलंबन लेना पड़ रहा है कि नहीं ऐसा? इतना ही नहीं, धनोपार्जन सब लोग करते हैं धनोपार्जन, लेकिन धनोपार्जन का ऐसा साधन अपनाना जिससे कि हमें बेवजह हिंसा झूठ चोरी करनी पड़े, तो ऐसे धनोपार्जन की प्रक्रिया इस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारी जो भोगवादी दृष्टि है, जो हमारी भोगाशक्ति है, वह भी हमें और बुराइयों की तरफ पापों की तरफ ले जाने में कारण बनती है। हमें उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। जो हमने परिग्रह जोड़ करके रखा है, उसके प्रति जो हमारे मन में आसक्ति है, वो भी हमें बुराइयों की और हिंसा की तरफ ले जाती है, हमारे आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में बाधक बनती है। विशेष रूप से श्रावक के और सदगृहस्थ के जीवन में ये सारी चीजें उसके आत्म उत्थान में बाधक हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने चार कदम आगे बढ़ने के बाद पांचवा कदम, पांचवी श्रेणी और छठवीं श्रेणी इस बात के लिए रखी है कि अपने जीवन को भोग विलास की सामग्री से थोड़ा सा मुक्त करने का पुरुषार्थ करें, वरना हमारे जीवन में हम हिंसा से बच नहीं सकते, हमारे जीवन में अहिंसा आ नहीं सकती। और जितना जितना आध्यात्मिक और आत्मिक विकास होता चला जाएगा, उतना हम अहिंसा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो चौथी और पांचवी दोनों जो प्रतिमाएं हैं, उनमें एक श्रावक एक सदगृहस्थ को जो नियम बताए हैं, वे अहिंसा से जुड़े हुए हैं, वे हिंसा से बचने के लिए। अहिंसा भी दो स्तर पर हमारे जीवन में हम पालन कर सकते हैं। एक तो हमारे अपने आंतरिक रूप से और एक दूसरी हमारे बाह्य या सामाजिक रूप से। आंतरिक रूप से हम अहिंसा का बहुत कम पालन करते हैं, हम तो बाह्य अहिंसा का जरूर थोड़ा पालन कर लेते हैं। आंतरिक अहिंसा समझते और आंतरिक हिंसा समझते हैं क्या? ध्यान ही नहीं जाता। क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना, लोभ करना, राग द्वेष करना, ये सब आंतरिक हिंसा है, अपने ही परिणामों का घात करना, अपने ही प्राणों का घात करना, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जो जितना कषायवान है, जो जितना राग द्वेष में लगा हुआ है, वो उतना अपने ही प्राणों का घात कर रहा है, हिंसा में लगा हुआ है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इस प्रक्रिया को एक सदगृहस्थ के लिए आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि तुम गृहस्थी में रह करके मंद कषाय रखना और राग द्वेष कम हो इस तरह का उपाय करना, उसके लिए एक अलग से पांचवें नंबर की और छठवें नंबर की प्रतिमा रखती, बताइए। और बाह्य हिंसा तो अपन सब समझते हैं, किसी भी जीव के प्राणों को का घात ना हो जाए हमारे मन वाणी और शरीर से, इस पर तो खूब विचार अपन करते हैं, बहुत सावधानी रखते हैं, देखभाल करके चलते हैं, सब सब अच्छा है। लेकिन भीतर मेरे परिणामों में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो मेरे प्राणों का घात हो जाएगा। और क्रोध आता किन कारणों से, कषाय आती किन कारणों से, कषाय आने का मुख्य कारण है, हिंसा इत्यादि होने का मुख्य कारण है मेरी अपनी भोगा शक्ति, मेरी अपनी अपरिमित इच्छाएं, मेरी अपनी कृत्रिम आवश्यकताएं, मेरे अपने धनोपार्जन का मिथ्या उपाय, मेरे अपने परिग्रह संचित करने की प्रवृत्ति, ये मेरे अपने प्राणों का घात करने वाली प्रक्रिया है। इससे बचना चाहिए, दूसरे के प्राणों के घात में हम निमित्त नहीं बनते। हिंसा के लिए बहुत कम लोग हिंसा करते होंगे जितनी कि अपने भोगा शक्ति की वजह से हिंसा करते हैं, जितना कि परिग्रह संचय करने के लिए हिंसा करते हैं। वास्तव में हिंसा के लिए उतनी हिंसा कोई नहीं करता होगा, किसी को मारने के लिए किसी का मन नहीं होता, लेकिन हम इस उपाय से उसे मारते हैं अपनी भोगा शक्ति को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस किस को मारने तैयार हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। हम डायरेक्ट किसी को नहीं मारते, लेकिन हम किस तरह से अपने अपने परिग्रह संचय करने के लिए दूसरे का शोषण कर लेते हैं। चीटी तो नहीं मारते हैं, लेकिन संगी पंचेंद्री का शोषण करने से हम नहीं बच रहे, हम अपने प्राणों का घात करने से भी नहीं बच रहे। 10 प्राण हमारे मिले हुए हैं। जो व्यक्ति अनर्गल प्रवृत्ति करता है वो निरंतर भयभीत होकर के अपने आयु प्राणों का घात करता रहता है। अनीति अकाल मरण का एक कारण है, अनीति करना। और हम संसार में धनोपार्जन इत्यादि में कितनी अनीति का सहारा ले रहे हैं आज वर्तमान में, और भीतर ही भीतर भयभीत भी रहते हैं, और उस भय की वजह से जो अपनी मूल आयु लेके आए थे उसको समय से पहले ही नष्ट कर रहे हैं अपनी आयु को। इस पर ध्यान नहीं जाता, इस वाली हिंसा पर ध्यान नहीं जाता, सुबह से शाम तक अपने आप को लगाए हुए हैं उस परिग्रह के संचय में, सुबह से शाम तक अपने एंटरटेन के लिए साधन जोड़ने में अपने आप को लगाए हुए हैं, अपने प्राणों का घात कर रहे हैं। पांचों इंद्री, मन बल, वचन बल, शरीर का बल, श्वासोच्छ्वास का भी एक बल है, सांस लेना भी, सांस लेने की फुर्सत नहीं, काम के मारे ऐसा कहने में आ जाता है कि मैं सांस लेने की फुर्सत नहीं, इतना काम है। काहे के लिए, चार इच्छाएं पूरी करने के लिए, थोड़ी सी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, परिग्रह संचित करने के लिए। भाई इस तरफ भी ध्यान आज के दिन तो जरूर जाना चाहिए। आज तो भगवान ने अपने मन वाणी और शरीर का उस बल का सदुपयोग कर लिया। अभी तक उसके द्वारा आश्रय हो रहा था कर्मों का, आज मन वाणी और शरीर का ऐसा सदुपयोग करेंगे, उसे ऐसा एकाग्र करेंगे कि जो शेष और संचित मलिनताएं हैं, अघातीय कर्म हैं, वे भी नष्ट हो जावें, और अब मन वाणी और शरीर इनसे ही पार होकर के अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लें। तो आज के दिन तो कम से कम हमें अपने मन वाणी और शरीर से होने वाली अपनी ही हिंसा के उपायों से बचने का कोई उपक्रम करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए, अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए, अपने परिग्रह का परिमाण कर लेना चाहिए, अपनी भोगा शक्ति को घटाना चाहिए, अपनी कषायों को मंद करने का कोई उपक्रम करना चाहिए आज के लिए। क्या अपन इसके लिए तैयार हैं? दीपावली की तैयारी कर रहे हैं ना अपन, और बहुत सारी तैयारी करी है, व्हाइट वॉश भी किया है, सब साफ सफाई भी करी, भीतर थोड़ी सी तैयारी, ये बाहर की तैयारी तो हो गई, आज पूरी हो गई, अब कोई नहीं कर रहा होगा मेरे ख्याल। आज तक कही था, कल रात में सबने अपनी कर ली होगी, आज तो सजावट का दिन है, आज तो सजाएंगे सब, कि भाई वो तो सब का दिन है आज, तो तो आज आज बाहर तो कितनी सजावट होगी, ऐसा ही हमें अब अपने जीवन की भी सजावट, अंतरंग की भी सजावट करने के लिए कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। सजावट ऐसे तो होगी नहीं कि अंतरंग में गंदगी पड़ी रहे और ऊपर से एक बढ़िया सा बरक लगा दो गोबर की मिठाई पर, ऐसा कहते हैं बस। तो ऊपर ऊपर से अगर हम कुछ आवरण लगा देंगे तो भीतर की गंदगी नहीं हटेगी, बाहर कितनी साफ सुथरा बना लेंगे अंतरंग की गंदगी नहीं हटेगी। अंतरंग की गंदगी हटाने का उपाय तो यही करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी। लोग तो छोटी सी यात्रा के लिए तैयारी करते हैं, हम तो अपने जीवन की इस यात्रा के लिए जरा भी तैयार नहीं है। जो हमारी रोशनी की यात्रा है, जो हमारी अंधेरे से बच करके प्रकाश की तरफ जाने की आने वाले दिनों में यात्रा है, दो दिन के बाद हम रोशनी के गीत गाएंगे, तो आज कम से कम अंधेरे को हटाने का इंतजाम तो कर ले। जो भीतर फैला हुआ है, वो जो आशक्ति का और लोभ का अंधेरा फैला हुआ है, वो जो कषायों का अंधेरा फैला हुआ है, वो जो अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है, क्या उसको हटाने का कोई उपाय नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। अन्नम पानम खाद्यम लेहियम, नहीं उसके पहले मूल फल शाक शाका करीर कंदप प्रसून बीजानी नामानि योत्ति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। जिसके भीतर अब अहिंसा और दया आना शुरू हो गई है, जिसके भीतर से हिंसा और कषायों का अंधकार हटने लगा है, वो अपने जीवन में क्या करेगा? मूल फल शाक शाका करीर कंदप प्रसून बीजानी, ये सब चीजें जितनी भी खान पान की चीजें हैं उन सब में मैं अहिंसा का ध्यान रखूंगा। दया मूर्ति, अब मेरे मन में बहुत दया आ गई है, उस दया के चलते, उस अहिंसा के चलते अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाऊंगा जिसमें कि जीव राशि का विघात होता है। मैं सब चीजों को प्रासुक करके ही ग्रहण करूंगा, क्योंकि अब प्रासुक अवस्था में, सचित अवस्था में वे चीजें जीव राशि से युक्त होती हैं। मैं पहले उनको जीवों के संचार से रहित बनाने की प्रक्रिया करके ही, प्रासुक करके ही ग्रहण करूंगा। पानी अब ऐसे ही नहीं मैं उसे और आमानी बिना गर्म किए नहीं, उसे गर्म करके जीवों के संचार से मुक्त करके प्रासुक करके ग्रहण करूंगा। फल फूल इत्यादि जो कुछ भी ग्रहण करूंगा वो सब प्रासुक करके और ग्रहण करूंगा, ताकि जीव राशि के घात से बच सकूं और अपनी लोलुपता से बच सकूं। क्योंकि जो चीज जैसी मिल गई उसको खा ली, और अगर कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा तो जरा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप हमारे मन में उस चीज के प्रति आसक्ति घट जाएगी। अभी तो सेव फल, अभी तो केला ऐसे ही ले आते थे और फौरन छीला और खा लिया, नहीं, अब उसको जो प्रासुक करने की प्रक्रिया है, प्रासुक करके फिर ग्रहण करूंगा। अब उसमें उतना स्वाद ना आएगा जितना कि सीधा खाने में आता था। हां, बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर बाद में अलग बात है कि उसको और ज्यादा संस्कारित करके और स्वादिष्ट बनाने की प्रक्रिया करने लगे तो फिर बेईमानी के तो बहुत उपाय हैं। लेकिन सचित त्याग वाले का उद्देश्य यही था, अपने आत्मिक विकास के लिए उद्देश्य यही था कि मैं अपनी लोलुपता को कम करूं, मैं अपनी आसक्ति को घटाऊं, मैं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूं, मैं अपने राग को कम करूं, जो मेरे इन चीजों के प्रति राग था उसको कम करने के लिए ये प्रतिमा ही रख दी कि अब अचित करके ही चीजों को ग्रहण करेंगे। सचित का त्याग कर दिया है, कोई भी चीज बिना प्रासुक हुए मैं ग्रहण नहीं करूंगा। कितना लिमिटेशन हो गया, अब कुछ भी नहीं, हिसाब से खाना पड़ेगा, अब ऐसे कुछ भी तो नहीं खा सकते। इस तरह से आचार्य भगवंत हमारे आध्यात्मिक और आत्मिक विकास के लिए हमें उपाय बताते हैं, हमें इन पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन में दया का भाव जितना जितना आता जाएगा उतनी ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने दोनों चीजें बता दी, जिसके मन में अहिंसा और दया नहीं होती उसके मन में ही कषायें बढ़ती हैं, उसके मन में भोषा भोगा शक्ति रहती, उसी के मन में धनोपार्जन और परिग्रह जोड़ने की इच्छा रहती, दया आ जाती मन के भीतर, या तो ये चीजें घट जाएं तो दया आए, और या की दया आ जाए तो ये चीजें घट जाए, दोनों ही बात है। संतोष पूर्वक जीना शुरू कर देगा, दयालु व्यक्ति होगा तो संतोष पूर्वक जिएगा, और संतोष पूर्वक जिएगा तो काय को अनाप शनाप आवश्यकताएं बढ़ाएगा, अनाप शनाप इच्छाएं करेगा, अनाप शनाप धन पैसा जोड़ के करेगा, और अनाप शनाप धनोपार्जन के नीप अन्याय के उपाय करेगा। ये सारी चीजें अपने आप ही खत्म होंगी। लेकिन हमारे भीतर वो जो दया छिपी हुई है उसको हम प्रकट करने का कोई उपाय नहीं करते। सबके भीतर दया का भाव आ जाता है, कई बार आ जाता मन में, लेकिन वो जो आसक्ति है वो हमारे दया के भाव को दबा देती है कि अरे ठीक है दया अपनी जगह है, लेकिन ये सब चीजें चाहिए हमारे लिए, इसमें इसके बिना थोड़ी काम चले। तो वो सब चाहिए, वो जो मेरे अंदर इच्छा उठती है वो इच्छा मेरे से सब कुछ करवाने के लिए तैयार हो जाती, मेरी दया को भी वो नष्ट कर देती, मेरी अहिंसा को भी नष्ट कर देती। मेरे अपने कर्म तो है ही, मेरा अपना स्वभाव भी जो मैंने बना लिया है, वातावरण भी है, ये सब मेरे जीवन में हिंसा इत्यादि के कारण बनते हैं। हिंसा के सैकड़ों कारण हैं, कषाय के सैकड़ों निमित्त हैं, लेकिन उन कषायों के बाह्य निमित्त होने पर भी, अंतरंग में कर्म का उदय होने पर भी, हमारा पुरुषार्थ हमें करने के लिए आचार्य भगवंत उपाय बता रहे हैं। पुरुषार्थ इतना ही करो कि अब खान पान की सब चीजें जिस तरह से हम उपयोग में लाते हैं उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाओ, उनको मर्यादा के भीतर ही ग्रहण करो, उनको प्रासुक करके ही ग्रहण करो, ताकि उसके प्रति जो राग भाव है वो घटेगा, तो हमारे जीवन में जो निरंतर पाप हो रहा था उससे हम बच जाएंगे। मैं आपसे बीच में एक बात कह रहा था कि हमारे भीतर भी दया है, हमारे भीतर भी करुणा है, हम सबके भीतर अहिंसा का भाव भी है, लेकिन क्या करें, हमारे संस्कार इतने प्रबल हैं, जितने प्रबल दया और अहिंसा के नहीं है उतने प्रबल हमारे कषायों के संस्कार है, उतने प्रबल हमारे सांसारिक वस्तुओं की आसक्ति के संस्कार है। उन संस्कारों को तोड़ करके और हम अपने दया और अहिंसा का, करुणा का उद्घाटन कर सकते हैं। एक उदाहरण मुझे याद नहीं आता कि मैंने आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, राजा की सवारी निकल रही थी, बांस सजाया गया था हाथी को जिस पर कि राजा बैठे हुए थे, तो उस पर जो मसनद बिछाई गई थी मखमल की, उस पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे, सैनिक चारों तरफ से उसको घेर करके चल रहे थे, लेकिन उन्हीं सैनिकों में से एक सैनिक के मन में चोरी का भाव आ गया। क्यों आ गया, क्यों आता है ये भाव मेरे अंदर, विचार ये करना चाहिए, क्यों आता मेरे अंदर हिंसा का भाव, क्यों आता झूठ का भाव, क्यों आता चोरी का भाव। कारण ढूंढेंगे तो सिर्फ एक ही कारण मिलेगा कि मेरी अनावश्यक इच्छाएं, मेरी अपनी भोग आसक्ति, मेरी अपनी परिग्रह संचित करने की इच्छा, एक ही कारण और कुछ भी नहीं। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि पेट भरने के लिए अल्प हिंसा से ही काम चल जाता है, लेकिन पेटी भरने के लिए अनावश्यक हिंसा करनी पड़ती है, सारे पाप करना पड़ते हैं, पेट भरने के लिए ज्यादा नहीं करना पड़ता। ये हमें आज के दिन विचार करना चाहिए कि आज का दिन हम पेटी भरने वाला दिन तो नहीं मना रहे, मना रहे हैं सब यही मना करके आज प्रसन्न है सब, कि आज तो आज का दिन तो बिल्कुल ऐसा ही मनाया जाएगा पूरे दिन, इसी के लिए तो इतनी तैयारी कर रहे थे, पांच दिन जिनसे प्रवचन तक में नहीं आ पा रहे थे, उस तैयारी में उसी के वराज महाराज ने ऐसा कह दिया, जिस चीज के लिए हम आज तक तैयार हो रहे थे और आज हमने पूरा सजा करके रखी है दुकान, और आज ही तो सब बिकेगा सामान, और ये सब लोगों को ऐसा उपदेश देंगे तो कौन आएगा लेने के लिए, सब गड़बड़ा हो गया आज तो मामला, काय को भगवान ने आज योग निरोध किया तेरस के दिन है? ऐसा लग तो नहीं रहा, ऐसा लग सकता है हमारे संस्कार वश, लेकिन इस संस्कार को तोड़ना पड़ेगा, और फिर भी आनंद आएगा, फिर भी दुकान उतनी ही सजी रहेगी, फिर भी दुकान में उतनी ही आवक होगी, लेकिन कोई संक्लेश नहीं होगा। क्यों? आने दो, आज जितना भी आता है आएगा, लेकिन मैं तो जितना मेरे पास है उसमें से उतना ही आज त्याग भी करूंगा, प्रसन्नता पूर्वक करूंगा। मेरा कुछ घटेगा भी नहीं, आया ही आया है आज तो मेरे पास। और मैंने जो दान देने का, दया का, करुणा का भाव, दया करुणा के भाव से ही तुम्हें दे पाऊंगा। मेरे पास जो भी है मैं दे दूंगा, मैं अपने पास और लाऊंगा नया नया। ये भाव अगर हमारे भीतर आ जाए, छुपा हुआ है हमारे भीतर, सबके भीतर, बस उसको उद्घाटित करना है। जैसा कर रहे थे वैसे ही सब चलेगा, बस थोड़े से परिणाम बदल जाएंगे और कुछ भी नहीं। अभी आसक्ति के थे, अब त्याग के और करुणा के और दया के भाव आ जाएंगे, काम ज्यों का त्यों चलेगा और ज्यादा आनंद आएगा। ऐसा नहीं समझना आप कि मैंने आपको ऐसा कह करके और मुश्किल में और डाल दिया। नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल से बच गए। पता नहीं कितने कर्मों को हम बांध लेते इस उपाय से, तो आज हम और कर्मों को थोड़ा तो काट ही लेंगे। भगवान तो पूरे के पूरे काटने के लिए कर्म चले गए, अपन थोड़े से कर लेंगे कम, कि अब इतनी आसक्ति नहीं है। लाने की इच्छा तो है, आए नई नई चीजें लाएंगे, बर्तन खरीद के लाएंगे और बहुत सारी चीजें लिस्ट बना रखी होगी कि ये खरीद के लाएंगे। हाँ ठीक है, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आज मैं ऐसी चीजें जो मेरे लिए अनावश्यक हैं, किसी को आवश्यक है तो वो भी दूंगा उसको। मैं आज सोच लूंगा कि ये चीजें आज का दिन भले ही मैं नहीं दे पाऊं, लेकिन आने वाले दो चार दिनों में मैं आज तय कर लूंगा कि ये चीजें मेरे बिल्कुल काम की नहीं है, इनको तो हटा ही दूंगा। ऐसा भी अगर आज अपन तय कर ले, इतना दया का भाव अपने भीतर ला ले, इतनी आसक्ति घटा ले, तो आज का दिन वाकई हमारे जीवन में भी धन हो जाए। भगवान के जीवन में तो आज का दिन धन है, हमारा जीवन भी धन हो सकता है, ऐसा विचार कर ले। वो उसके मन में आ गया चोरी का भाव, जैसे अपने मन में आ गया ग्रहण करने का भाव, त्याग का भाव साथ में रहे तो ग्रहण का भाव ज्यादा तकलीफ नहीं देता, लेकिन जब त्याग का भाव बिल्कुल नहीं रहता, ग्रहण ही ग्रहण का भाव रहता तो गड़बड़ हो जाती, तो संसार बढ़ जाता है। उसके मन में चोरी का भाव क्या आया, ग्रहण का भाव क्यों आया, त्याग क्या क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा, दूसरे की संपदा देख करके ग्रहण करने का भाव आता, त्याग का नहीं आता। मुश्किल ये, तो इतने सारे हीरे जवाहरात, इसमें से एक ले लूं, राजा को क्या फर्क पड़ने वाला, मेरा तत्व दर्शन, मेरे से तो उसको घृणा करनी चाहिए, मेरे लिए तो उसके मन में गालियां आनी चाहिए थी। और ये क्या कह रहा है कि मैं दर्शन में कोई इतना बड़ा थोड़ी हूं कि मेरे दर्शन करने के लिए क्या, अब थोड़ा सोच में पड़ गया। आया वो कैदी, राजा के दर्शन किए, अत्यंत प्रसन्न दर्शन करके गदगद साष्टांग हो गया चरणों में, माफी वाफी नहीं मांग रहा हूं, बस आपके दर्शन कर। अच्छा हो गए दर्शन, जाओ। तो रुक गया वो, सैनिकों ने कहा कि चलते क्यों नहीं? बोले अभी तो आधे दर्शन हुए। अरे तो अच्छे से कर लो पूरे। कहते नहीं, अभी तो आधे दर्शन हुए तो कैसे होंगे ये पूरे? राजा के राजा ने खुद पूछ लिया कि मेरे पूरे दर्शन कैसे होंगे अगर आधे हुए हैं तो? मैं तुम्हारा अर्थ नहीं समझ रहा हूं, कहीं भी मत बुझाओ। तो उसने कहा कि अभी तो राजन मैंने आपके क्रोध के दर्शन किए हैं, अभी तो मैंने आपका गुस्सा देखा है, अभी मैंने आपका प्यार तो देखा है, अभी आगे दर्शन। बस इतनी सी बात, बहुत बड़ी बात है। अभी तो मैंने आपके जीवन के आधे पहलू को देखा है जिसमें क्रोध है, जिसमें गुस्सा है, नाराजगी है, अभी तो मैंने वही पहलू देखा है। अभी तो आपका प्यार, आपकी करुणा, आपकी दया का वो पहलू, वो भी तो आपके भीतर है, वो नहीं देखा। राजा जोर से हंसे और बोले, वो देखना चाहते हो तो जाओ, मैंने तुम्हें मार दिया। तुम मेरी दया करुणा भी देखना चाहते हो तो अब हो गए पूरे दर्शन। अब क्या, अब माफी कर दिया? पूरे दर्शन होने के बाद फांसी थोड़ी हो गई भैया। ये तो एक घटना है, हमारे भीतर भी हमारे जीवन के आधे अधूरे दर्शन होते हैं,
जो हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, कषायन करते हैं, पाप करते हैं, वो हमारे जीवन का अधूरा पहलू है। एक और पहलू हमारे भीतर का छिपा हुआ है जिसमें दया है, करुणा है, अहिंसा, उसको प्रकट करने के लिए गृहस्थ के लिए तक आचार्य भगवंत उपाय बता रहे हैं कि अपने भीतर की दया को अगर हम प्रकट करना चाहें तो अपनी
भोगाशक्ति को घटाएं, परिग्रह संचय की प्रवृत्ति को घटाएं, नीति न्याय पूर्वक अपना जीवन जिए, खान पान की प्रक्रिया को जरा व्यवस्थित कर लेंगे। इतना करने से भी हमारे भीतर वो दया और करुणा धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी। इसी भावना के साथ कि आज का दिन जैसे भगवान के जीवन में धन्य हुआ, हम भी आज के दिन को धन्य करें और अपनी आशक्ति को घटाकर भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि हे मानाय निर्धूत करिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाति महावीर भगवान की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के 5 श्लोक पढ़े थे, उनको रिवाइज करते हैं और आगे के 5 पढ़ लें। मोह तिमराप हरणी दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुषः सेवते नृपतिं हिंसानृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो वीर्तिः संज्ञस्य चारित्रम् सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानां अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां विहीनां त्रेधातिश्च यनुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काममूर्षेभ्या स्थूलेभ्या पापेभ्यो व्युपरमण मनुव्रतं भवति मूर्षेभ्या और मूर्षाभ्या दोनों पाठ भेद है, अंतर कुछ नहीं है, हमें याद है मूर्षेभ्या, इसमें मूर्षाभ्या पाठ लिया गया है, दोनों अर्थ वही है। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगय त्रयस्य सर्चर सत्वान् मननाद्योग त्रयस्य चर सत्वान् नहि नस्ति यत् दाहु स्थूल दुर्लभाद् विरमणं च ऐसा भी पढ़ सकते हैं लेकिन नहीं बनेगा एक मिनट नहीं नस्ति यत् दाहो स्थूल बधात् विरमणं निपुणा छेदन बंधन पीड़न मतिभावारोपणं व्यतीचारा आहार वारणापि च स्थूल बधात् विपरते पंच स्थूल मलीकं न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति संतः स्थूल मृषावाद वैरमणम् त्वैवादरहोप्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्च सत्यस्य ये पांच पद आज अपन इनकार समझेंगे कल चारित्र के बारे में जो पांच श्लोक पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लें जैसे ही मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है हमारे जीवन में दर्शन का प्रकाश हो जाता है ऐसा कहा इसको अपन अपनी भाषा में क्या लेंगे जैसे ही दर्शन मोहनी कर्म नष्ट होता है हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और जैसे ही श्रद्धा सच्ची हो जाती है तो हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है ज्ञान तो पहले से ही था पर सच्ची श्रद्धा होती ही वो सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगा ये दोनों चीजें तो एक साथ हो गई लेकिन अब जो सज्जन पुरुष हैं वे राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए चारित्र धारण करते हैं राग द्वेष के अभाव का नाम ही चारित्र है और उस राग द्वेष का अभाव करने के लिए या राग द्वेष का अभाव हो जाने पर जो वाही में व्रत नियम इत्यादि का पालन किया जाता है वो बाह्य चारित्र कहलाता है क्या राग द्वेष के अभाव का नाम अंतरंग चारित्र और राग द्वेष के अभाव होने पर या राग द्वेष का अभाव करने के लिए जो बाहर में अहिंसा आदि व्रतों का पालन किया जाता है वो बाह्य चारित्र कहलाएगा राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कर्ता होती राग द्वेष का अभाव होने से बाहर में भी हिंसा आदि पांच पाप फिर नहीं होते हैं या कि ऐसा कहें कि जिसको राग द्वेष नहीं करना है तो वो क्या करेगा हिंसा आदि नहीं करेगा जैसे कि किसी व्यक्ति को धन पैसे की आकांक्षा है तो वो राजा की सेवा करेगा जिसको धन पैसे की आकांक्षा नहीं वो काय को करेगा जिसको राग द्वेष नहीं घटाना वो काय को व्रतों को पालन करेगा जो व्रतों को पालन करेगा वो राग द्वेष को घटाने के लिए करेगा ऐसा ले लिया जैसे कोई राजा की सेवा कर रहा है तो क्यों कर रहा है कोई पर्पस तो होगा सेवा करने से मैं राजा के समान बन जाऊंगा या कि मैं भी धनवान बन जाऊंगा ठीक है इसी तरह से अपन विचार करें कि मैं पांच पाप क्यों नहीं कर रहा हूं कि क्यों क्योंकि मुझे राग द्वेष का अभाव करना है इसलिए नहीं कर रहा तो या कि दूसरे ढंग से राग द्वेष का अभाव हो जाने पर कोई क्यों पांच पाप करेगा अर्थात किसी व्यक्ति को धन पैसे की आवश्यकता नहीं है तो कोई क्यों राजा की सेवा करेगा या तो ऐसा ले लो और या कि ऐसा ले लो कि जिसको पैसे की आवश्यकता वो राजा की सेवा करेगा तो जिसको राग द्वेष का अभाव करना है वो पांच पापों से बचेगा दूसरे ढंग से इसके कथन करने में बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसलिए मैं इसको ऐसे कथन उस पर रुक गया हूं, क्योंकि इसी वजह से और एक नया मत खड़ा हो गया अपने यहां पर। हां, इस तरह की बातों के इंटरप्रिटेशन में और कुछ नहीं, तीन तो पहले से ही थे, पहले बड़े बड़े दो थे श्वेतांबर दिगंबर, फिर दिगंबर में भी 20-13 वाला मामला आया, फिर तारण पंथ यहां नहीं है, वो उस तरफ बहुत है मैं मध्य प्रदेश साइड, और फिर एक चौथा वाला पंथ और शुरू हो गया, सब समझते हैं, है? तो वो वाला पंथ, उसमें जो है इंटरप्रिटेशन का ही झगड़ा है और कुछ भी नहीं, वो इंटरप्रिटेशन करने का तो देख लो, राग द्वेष का अभाव ही नहीं हुआ तो पांच पाप छोड़े सका होंगे, ले जाकर दे व्याख्या, हमें क्या देर क्या लगनी, इसी में तो लिखा है, जब तक राग द्वेष का भाव नहीं हुआ तो पांच पाप छोड़ने से कुछ नहीं होता, अर्थात व्रत इत्यादि पालन करने से कुछ नहीं होता, राग द्वेष का अभाव होने से सब कुछ होता है। अब जब व्याख्या कर दो तो आदमी क्या करेगा, फिर वो कहेगा व्रत आदि से कुछ नहीं होता तो पाप ही करो फिर, और क्या कर सकता और उसकी व्याख्या कैसी करनी, मेरे राग द्वेष का अभाव चाहता हूं मैं, इसलिए व्रतों का सेवन कर रहा हूं, मैं राजा से धन पैसा चाहता हूं इसलिए राजा की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने राग द्वेष का अभाव चाहता हूं इसलिए मैं सेवन कर रहा हूं अहिंसा इत्यादि का, एक व्याख्या ये हो गई। दूसरी, जिसके राग द्वेष का अभाव हो जाता है वो क्यों पाप इत्यादि हिंसा करेगा, एक व्याख्या ये हो गई। तो जिसके पास धन पैसा है वो क्यों धन पैसे की आकांक्षा से राजा की सेवा करेगा, कहा पुरुषार्थ सेवते नृपतीन अनपेक्षितार्थ व्यक्ति, जिसको कोई किसी की अपेक्षा नहीं है वो काय को राजा की सेवा करेगा, ऐसा। अब जो है इन दोनों अर्थों के अलावा तीसरा निकालेंगे तो बाह्य चारित्र का निषेध जैसा मालूम पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। अंतरंग चारित्र में बाह्य चारित्र निमित्त है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाह्य चारित्र होने पर भी अंतरंग में राग द्वेष का अभाव हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन अंतरंग में राग द्वेष का अभाव होने पर बाह्य में हिंसा आदि का अभाव हुए बिना नहीं रहेगा, ये नियम है। क्या अंतरंग राग द्वेष का अभाव हो जाए तो कोई हिंसा आदि नहीं कर सकता, ठीक, और कोई हिंसा आदि नहीं कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि भीतर राग द्वेष घट गए हों, क्योंकि कई लोग हैं जो चुप्पा बैठे रहते कछु नहीं करते मालूम पड़ते तो वे सब वीतरागी हो जाएंगे, कहते नहीं आप करते दिखाई नहीं पड़ रहे बाहर से, लेकिन अंतरंग में तो आपके अभी राग द्वेष है, जब तक राग द्वेष है तब तक हिंसा है आपके भीतर, भले ही बाहर से नहीं कर रहे हो आप, इस अपेक्षा से ये कथन करना भैया, और ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा कि अपन को बाहर में व्रतों का पालन करना चाहिए और व्रती व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वो व्रतों का पालन इसलिए कर रहा है ताकि उसके राग द्वेष घटे, बस खत्म बात, और ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ता, और जिसके जितने राग द्वेष घटते जाते हैं उतना वो पापों से बचता जाता है, सीधा सीधा, और कठिनाई कुछ भी नहीं है, ये तो बुद्धि का खेल है, इंटरप्रिटेशन तो सिर्फ बुद्धि का काम है, जिसको करना है उसको कोई ज्यादा इससे सब में उलझने की नहीं है। अब कह रहे हैं कि वो जो बाह्य चारित्र है, क्योंकि अंतरंग चारित्र तो सीधा सीधा है कि राग द्वेष के अभाव का नाम अंतरंग चारित्र, वीतरागता का नाम अंतरंग चारित्र, लेकिन वह वीतरागता कैसे प्राप्त होगी जब तक हम बाह्य में हिंसा आदि से निवृत्त नहीं होंगे, तो कहते वे जो पांच पाप हैं वे ही जो है हमारे चारित्र को दूषित करने वाले हैं, वे पाप की प्रणाली है हिंसा इत्यादि, इसलिए उनसे विरक्त होने का नाम ही चारित्र है, पांच पापों से विरक्त होने का नाम ही बाह्य चारित्र है, और राग द्वेष से रहित होने का नाम ही अंतरंग चारित्र है। वह जो बाह्य चारित्र है वो दो प्रकार का होता है, सकल और विकल, अर्थात पूरा और आंशिक। सकल किसके होता है, सर्वसंग वीरता नाम अनगारा नाम, जो मुनि बन गए हैं जिन्होंने सब परिग्रह को छोड़ दिया है, घर गृहस्थी भी छोड़ दी है, तो उनके लिए तो पूर्ण चारित्र होगा, और विकलम सागारा नाम ससंगा नाम, जिनने अभी घर गृहस्थी कर रखी है परिग्रह भी रख रखा है, ऐसे सदगृहस्थ के लिए कौन सा चारित्र होगा, कहते विकल चारित्र अर्थात आंशिक चारित्र होगा। अब वो आंशिक चारित्र किस प्रकार का है, तो कहते आंशिक चारित्र 12 व्रतों के रूप में आता है, गृहस्थ के लिए 3 अनुव्रत की 5 अनुव्रत,
पांच अनुग्रह और तीन गुणव्रत और चार, तो थोड़ा याद रहता बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनको बीच में ऐसा कर देते हैं कि तीन अनुग्रत, तो वो फौरन कहेंगे कि नहीं पांच अनुग्रत, तो सब भूल पड़े उसमें। पांच अनुग्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत, ये बारह। गुणव्रत गुणव्रत क्यों कहलाते, अनुव्रत अनुव्रत क्यों कहलाते, शिक्षा व्रत क्यों कहलाते, प्रश्न उठ सकता है। तो जो महाव्रत हैं वे महान आत्माओं के द्वारा पालन किए जाते हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले व्रतों को अनुव्रत, अनुगमन करना, टू फॉलो। हम उन महाव्रति को ही फॉलो कर रहे हैं इसलिए अनुव्रति कहलाएंगे। सद्गृहस्थ को किसको फॉलो करना चाहिए, महाव्रति को, तो वो अनुव्रति कहलाएगा। और अनु के मायने होता है छोटा, तो हमारे व्रत महाव्रतियों की अपेक्षा कैसे हैं, छोटे हैं, इसलिए दो अर्थ हो गए, अनु का मतलब छोटा भी और अनु का अर्थ उसके पीछे पीछे चलने वाला। तो गृहस्थ मुनियों के पीछे चलने वाला है इसलिए अनुव्रति है, या कि ये व्रत पालन करने करना आंशिक रूप से करते हैं इसलिए इनको अनुव्रत कहते हैं, ठीक है। गुणव्रत किसे कहेंगे, जो अनुव्रतों में गुणों की वृद्धि करें, उनको संभालें, वो कहलाएंगे गुणव्रत। अनुव्रतों में वृद्धि करने वाले व्रतों को गुणव्रत कहते हैं, और जिससे महाव्रतियों के समान मुनियों के समान आचरण की शिक्षा मिले उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। इस तरह से यह बारह व्रत, और अब जो है इन बारह व्रतों का ही स्वरूप इसमें चलेगा, कहाँ तक, बहुत सारे 80 पदों तक, और फिर उसके बाद संलेखना, और फिर 11 प्रतिमाएं। बस इतना ही मामला है इसमें। कितनी चीजें हैं इसमें, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और सम्यक चारित्र में भी अंतरंग और बाह्य चारित्र। अंतरंग चारित्र तो एक शब्द में कह दिया कि वीतरागता स्व अंतरंग चारित्र, बाह्य चारित्र तो बाह्य चारित्र भी पूरा और आंशिक, तो पूरा तो मुनिजनों को, तो मुनिजनों वाले ग्रंथ में पढ़ो, ये तो श्रावक वाला ग्रंथ है। तो इसमें किसके बारे में कहेंगे, अब बाह्य आचरण में से भी जो आंशिक आचरण का पालन करने वाले सद्गृहस्थ हैं उनके 12 व्रतों भर की इसमें चर्चा है। अब एक एक पद को पढ़ते हैं। प्राणातिपात वितथ व्याहार व्यथत व्याहार और इस्ते काम मूर्छेभ्यः, ये पांच पापों के नाम हो गए अलग अलग ढंग से। प्राणातिपात का मतलब होता है दूसरे के प्राणों का घात करना, यानी हिंसा। और वितथ व्याहार, झूठा व्यवहार करना, वितथ मतलब होता है झूठा। और इस्ते का मतलब होता है चोरी, और अस्ते मतलब अचोरी जिसको कहते हैं, और काम ये अभ्रम जिसको कहते हैं, कुशील जिसको कहते हैं, और मूर्छा, यहां परिग्रह ना कर करके क्या कहा, मूर्छा। परिग्रह का अर्थ ही होता है मूर्छा, हमारे भीतर जो आशक्ति है वही तो परिग्रह है। किसी के पास में ढीला भी नहीं हुई लेकिन मूर्छा भारी हो गए तो वो परिग्रह ही कहलाएगा, और किसी के पास में बहुत सी चीजें हैं लेकिन वो अनाशक्त है तो वो निष्परिग्रही कहलाएगा। ऐसी परिभाषा है अपने यहां पर। हाँ, नहीं तो भगवान के पास तो देखो कितना ठाट वाट है, हीरे जवाहरात सब इतने तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर हीरे ही की भगवान, और छत्र चमर भामंडल सब इतना इतना सारा है लेकिन भी उससे अलिप्त हैं, निष्परिग्रही कहलाएंगे इतना सामान रखने के बाद भी। और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता भिखारी है, अब ढीला नहीं है, कुछ भी नहीं है, फटे चिते कपड़े हैं, अपन सोचेंगे कि बिल्कुल अपरिग्रही है, कहती अपरिग्रही नहीं, भीतर आशक्ति बहुत है कि हो तो हमारे पास, ये जो होने वाला हमारे पास होता वो उसका परिग्रह है। तो यहां इसलिए मूर्छा लिख दिया, मूर्छा का मतलब बेहोशी नहीं देना, ये टेक्निकल वर्ड है जैनिज्म का। हाँ, मूर्छा के मायने हैं यहां पर परिग्रह, और सामान्य कॉमन उसमें क्या है, सामान्य भाषा में मूर्छा मतलब बेहोशी, तो ये भी एक तरह की बेहोशी तो है ही, नशा तो है ही, पैसा को नशा, शराब अकेले को नशा नहीं होता, पैसा को हो पद प्रतिष्ठा का नशा होता, उसमें फिर सब भूल जाते हैं, अपन अपना धर्म भूल जाते, तो वो मूर्छा कहलाएगी, बेहोश हो गए, अपने स्वभाव को भूल जाना ही बेहोशी है यहां पर। ये पांच पाप स्थूलेभ्यः पापेभ्यो, इन सब पापों को स्थूल रूप से विरमणम अर्थात इनसे व्युपरमण, इन सब से जो है वो
इनमें रमता नहीं है अर्थात इनसे विरक्त हो गया है स्थूल रूप से। अनुव्रतम भवती, अनुव्रत किसे कहेंगे, पांच पापों का स्थूल रूप से। हाँ फिर तान लेते हैं उसके सामने जाकर के 10-20, जिसने जितनी बड़ाई बड़ी पढ़ाई करी वो उतने में बिक जाएगा, माल सस्ता और महंगा सब प्रकार के लेवल रहते हैं उसमें कि इतना पढ़ाई तो इतना लेवल, इतना पढ़ाई तो इतना लेवल। ये भी वही ढंग है, ये ध्यान रखना। आप मैं सीरियसली कह रहा हूं इस चीज को, ये चोरी में शामिल है। क्यों? क्योंकि संक्लेश करवा दिया, सामने वाला दे रहा है तो ले लो, लेकिन आप उसे प्रेशराइज करके और उससे ले रहे हैं तो संक्लेश कर दिया। ये हिंसा भी इसमें हो गई, झूठ भी बोला आपने, आप पैसे वाले होकर के हाथ फैला रहे, बताइए। और परिग्रह तो बड़ा ही पांचों पाप हो गए इसमें देखा जाए अगर तो, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज को, और सब आराम से स्टेटस पॉइंट बन गया। ये हमारे उस समय टाइम में भी था कि देखने पहुंचते हैं लोग कितनों दो काका आओ दहेज में, अरे कछु नहीं आओ पैसा था है कैसी जगह है कर लो आओ गरीबों में काय और नहीं मिली तुम्हें मोड़ी को नहीं दूसरी, ऐसा चर्चा करते थे लोग। हाँ और अगर आज के समय में अगर कोई नियम मांगे लड़का वाला तो कैसी चर्चा चलती, कछु ने कछु बात हुई है, कछु खोट हुई है जब तो मांग नहीं रहे हैं, ऐसा कहने में सुनने में आता। अब दो ही तरफ से मुश्किल है, ये प्रक्रिया चल पड़ी है, अपन ही ने बनाई इसको और अपन चाहे तो इसको खत्म कर सकते हैं। डॉवरी के मायने दहेज होता, उसका इंग्लिश में भी अर्थ लिखा हुआ है कि एक गृहस्थी के सामान के साथ अपनी बेटी को दूसरे को सौंपना, इतना ही। और इसी को कन्यादान अपने यहां पर लिखा, समदत्ति अपने समान आचार विचार वाले को गृहस्थी का सामान दे करके, हीरे जवाहरात और पैसे दे के नहीं, गृहस्थी का सामान कि अपनी गृहस्थी करो और अपना कमाओ, खुद दो हाथ हैं तो कभी बूढ़े हो गए नहीं, लगता तो यही है, पहले से चाहिए धंधा पानी करने के लिए 10-20 लाख रुपये, तो फिर काय को ब्याह कर रहे हैं जब आपके बाहुओं में सामर्थ्य नहीं है एक खो और कमा के खावे की, तो काय को ब्याह कर रहे। सीधा सीधा प्रश्न उठाना चाहिए, दूसरे को संक्लेश करा रहे वो जितना दे दे। ये इसलिए मैं इसको जोर से कह रहा हूं क्योंकि वैसे तो कोई चोरी नहीं, इतनी तो हिम्मत ही नहीं है कि बंदूक लेके दूसरे के दे जावे, है हिम्मत कौन खड़ो बता देगा, हाथ उठा देंगे, नहीं हमारी हिम्मत नहीं, तो फिर सब चोरी से बच गए, बहुत बढ़िया, फिर तो सब क्या चोरी व्रत हो गया, महाव्रत तक हो गया, चोरी भी नहीं करते बिल्कुल नहीं। लेकिन चोरी करने के हमने नए नए ढंग याद कर लिए हैं, ये सब वही ढंग है। फिर काम अर्थात वासना हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों के भोगने की इच्छा होती है, अकेले एक इंद्रिय की तरफ दृष्टि जाती है, ये ध्यान रखना। काम मूर्छ, काम का अर्थ यहां पर पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, भोजन की लोलुपता वाले को कोई दोषी नहीं ठहराता, बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि पांच इंद्रियों के विषयों का जिससे पोषण होता हो वो सब अभ्रम है, और पांच इंद्रियों के प्रति जो विरक्त है वो कहलाएगा वास्तव में ब्रह्मचर्य अनुव्रत। और मूर्छा तो परिग्रह कार्थी, इस तरह से ये पांच पापों के त्याग का नाम अनुव्रत। अपन ने पहले से ही इसको पढ़ लिया, अरे कोई बात नहीं, इसमें भी वही लिखा, संकल्पात कृत कार्य मननात योग त्रयस्य चर सत्वान, अर्थात योग त्रयस्य मतलब तीनों योगों के द्वारा, कृत कार्य अनुमननात अर्थात स्वयं करना, दूसरे से कराना, दूसरे के किए हुए की प्रशंसा करना, समर्थन करना, यह कहलाता कृतकार्य अनुमोदना। तो मन वचन काय से, कृतकार्य अनुमोदना से, इन सब से संकल्पात संकल्प पूर्वक चर सत्वान, चर सत्वान मतलब त्रस जीव, चलने फिरने वाले, अपनी रक्षा के लिए बचाव करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है वो चर सत्वान त्रस जीवों को नहीं नस्ती नहीं मारता है। तत् निपुणा स्थूल वदात विरमणम, उसे ही स्थूल रूप से और
हिंसा से विरक्त होने वाला अर्थात इस अहिंसानुवृत्ति कहते हैं। इसमें इतने ही दिया है, इसमें त्रिहिंसा को त्याग और छह ढाला में तो व्यथा थावर न सहारे इतना और जोड़ दिया, पर इसमें तो इतना ही लिया कि त्रस जीवों का संकल्प पूर्वक घात नहीं किए करेगा, जी जा रही चीटी मैं ऐसे मारूं, नहीं ऐसा नहीं, इतना इतना उसके हिंसा का भाव नहीं रहेगा, लेकिन असावधानी हो जाने पर चीटी मर जाएगी तो भीतर भीतर दुखी होगा कि देखो मैंने असावधानी करी, चीटी मर गई, लेकिन मैंने मारने का भाव नहीं था, मर गई मेरी असावधानी मेरे प्रमाद से, मैं सावधानी रखूंगा। पर इतना तो उसका त्याग है कि वो जान बूझ करके और मन वचन काय सबसे अकेले शरीर का अपन को दिखता है कि शरीर से चीटी मर गई, लेकिन मन में मारने का भाव आया, वाणी से मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसी वाणी भी नहीं बोली मन में, नहीं तो वो और अपन हमारा तो त्याग है, आप तो कर सकते हो, आप तो करो, ऐसा भी नहीं कहेंगे और न स्वयं करेंगे न दूसरे से कराएंगे, कोई कर रहा होगा बहुत अच्छा। जैसे कि अभी देखो आतिशबाजी चल रही है, इसके लिए अलग अलग ढंग से बताते, कोटा में तो भारी आतिशबाजी, किसी की तरफ से कोई वो निकलता है पेपर, उसकी तरफ से दिखाई गई और हजारों लोग उसमें शामिल, और वो कह रहे हैं कि बच्चे बहुत प्रसन्न थे आतिशबाजी देख करके, टकटकी लगाए देख रहे थे, पूरा समर्थन पूरा इन्वॉल्व उसी में, संगी पंचेंद्री जी मर रहे हैं और पूरा सामूहिक पाप, ये कहला था सामूहिक पाप, सबने समर्थन किया, चलाया एक ने और समर्थन सबने किया, अब जब फलित होगा सामूहिक पाप, सो पूरी की पूरी ट्रेन में एक्सीडेंट में चली गई, पूरी की पूरी बस का एक्सीडेंट हो गया, प्लेन में बैठे थे सो एक्सीडेंट हो गया, बाढ़ आ गई सो सब बह गए, भूकंप आ गया सो सब मर गए, ये सामूहिक पाप का उदय आएगा, क्योंकि सबने सामूहिक पाप कमा लिया, एक ने किया, अपन सब बैठे बैठे मजा ले रहे, नहीं इससे बचना चाहिए। बता रहे हैं कि इतनी इतनी आतिशबाजी कितनी जीव राशि का घात होता, और अपन बच्चों को दिलाते हैं, दिलाने चलाते नहीं, हम दिलाया बच्चों को, दिलाने में भी उतना ही जितना चलाने में, बिल्कुल। इसलिए पहले ही समझा देना चाहिए कि व्यर्थ हिंसा क्यों कर रहे हैं, अग्नि जलाकर के भोजन पकाने में होने वाली हिंसा तो क्षम्य है, लेकिन पटाखे में अग्नि लगाने में जो होने वाली हिंसा है वो क्षम्य नहीं है, ये इतना अंतर है, ये सावधानी रखने का काम है। ये संकल्पी, अब कैसे समझ में आएगी संकल्पी हिंसा, यही तो संकल्पी हिंसा है जिसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं सद रहा है, फिर भी हाँ सब जीव इसमें मुझे मजा ले रहा हूं, मैं तो पानी का फव्वारा चल रहा है देखने जा रहा है, अब जल का एक जीव का तो मरण हो रहा है और अपन को आनंद आ रहा है, बहते हुए पानी को देखने जा रहे हैं, बड़ी बाढ़ नदी आ गई है और ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है, हाँ ठीक मजा ले, वो तो जीव है और अपन उसका आनंद ले रहे हैं। ये छोटे मोटे जीवों का तो ठीक है उसमें, लेकिन जो बड़े त्रस जीव हैं उनका घात होने में हम आनंद लेते हैं, वो सब संकल्पी हिंसा, मन से भी समर्थन नहीं करना, ना वाणी से और ना शरीर से एक रक्ति भी, तब कहलाएगा ये अनुव्रत। अब फिर कह रहे हैं कि इसके अनुव्रत के पालन करने में सावधानी रखना, प्रिकॉशंस पहले से बता दे रहे हैं, नहीं तो दोष लग सकते हैं, कौन कौन से, छेदन, अहिंसानुव्रत जिसने धारण कर लिया है उसको छेदन नहीं करवाना चाहिए, नाक कान इत्यादि का छेदन भी नहीं करवाएगा, पशुओं के नाक में नकेल नहीं डलवाएगा, नहीं तो दोष लगेगा उसके व्रत में, व्रती व्यक्ति के लिए है, और बांधना, वो जानवर भी अपने घर में रखेगा तो उनको रस्सी से नहीं बांधेगा, खुला ऐसा छोड़ के कमरे में भले ही बंद कर देगा पर वो घूम सकते हैं यहां वहां, रस्सी जंजीर से नहीं बांधेंगे, बांधना नहीं, और पीड़ा देना, पीड़नम मारपीट करना, और अति भारारोपण उनसे ज्यादा काम ले लेना, उनकी शक्ति से ज्यादा काम ले लेना उनसे, हैं जैसे कि खिलाया तो कमती और दूध तो पूरा चाहिए,
मशीन लगा के निकाल लो, आखिरी बूंद तक निकाल लो, जिसके बाद फिर ब्लड आ जाए सीधा। ये क्या चीज है? ऐसे वाले उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए। डेयरी फार्म वाले यही करते हैं अधिकांश, आखिरी बूंद तक निकाल लेते हैं, जिसके बाद फिर जो ब्लड सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू होती है और ब्लड आना शुरू हो जाता है वहां तक। ये इससे बचना चाहिए। ये कह रहे हैं इसमें दोष लगेगा, अनुव्रत जिसने धारण कर लिया। अति भारारोपण का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि पीठ पे कछु ज्यादा लाद दो, कुल आग्रह पीठ पे है, लेकिन